नौवा अध्याय छठा श्लोक।
कारण स्वयं कृष्ण प्रेमा मरतरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानां यस्तं चैतन्यमाश्रये।
श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक गुप्त अवतार है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि को त्रियुग बताया जाता है, कि तीन युगों में वे आके प्रकट होते हैं। लेकिन कलयुग में ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार वो इस गुप्त रूप में अवतार लेते हैं और केवल उनके भक्तों को ये याद होता है कि वो स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के लिए बाहरी कारण भी है और अंदरूनी कारण भी है, इसके बारे में चर्चा हम कभी और करेंगे। लेकिन बाहरी कारणों में से एक कारण ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को, शुद्ध भक्ति को फैलाने के लिए यहाँ पर पृथ्वी में अवतीर्ण हुए थे। और किस तरह से, किस रूप में वो इस प्रेम को बांटना चाहते थे, इसका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति कल्प वृक्ष के मूर्तिमान स्वरूप है और इस वृक्ष के माली वही हैं, इस वृक्ष को संभालने वाले वही हैं, इस वृक्ष के फल को चखने वाले और फल को बांटने वाले भी वही हैं। मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेम अमर तरु स्वयं। कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई संसार का प्रेम नहीं है। जिस तरह से लोगों के बीच में प्रेम होता है, आसक्ति होती है, कृष्ण प्रेम ऐसा नहीं है। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, दोनों जिस तरह से काम और प्रेम में अलग अलग लक्षण होते हैं। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि जब हम कोई चीज हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं उसको काम कहते हैं, और जब हम कोई चीज भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करते हैं तो वो प्रेम कहलाता है। सच्चा प्रेम या सच्ची भक्ति यही चीज है जो कि बिल्कुल निस्वार्थ ढंग से की जाती है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रतीति। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि मनुष्य धर्म के लिए, मनुष्य जाति के लिए पर धर्म है कि वह भगवान श्री हरि के शरण में जाकर उनकी शुद्ध सेवा करे, उनकी भक्ति करे। और ऐसे भक्ति के लक्षण है कि ये बिना कोई स्वार्थ के होना चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे भक्ति या प्रेम से ही आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। संसार के प्रेम को करने से हृदय शांत नहीं होता, पूरी तरह से आत्मा तृप्त नहीं होती है। और ये तथाकथित संसार का प्रेम हमेशा अंत में दुखद अवस्था में व्यक्ति को पहुंचा देता है, क्योंकि आखिर में यह संसार का तथाकथित प्रेम क्षणिक है। दो लोग जो आपस में प्रेम करते हैं, चाहे वो माँ और बेटा हो, पति और पत्नी हो, भाई और भाई हो, जो भी हो, वो सब मृत्यु का सामना करने वाले हैं। और मृत्यु जब आएगी तो हम अपने निकट के संबंधी को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह से संसार का प्रेम जो है वो सच्चा प्रेम नहीं है, बल्कि वो दुख का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ जिस प्रेम का वर्णन हो रहा है वो अमर है, कृष्ण प्रेम अमर, जिस प्रेम का कभी अंत नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण अमर है क्योंकि वो भगवान है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और जीव भी अमर है, तो अमर जीव और अमर भगवान के बीच में जो संबंध है वो भी अमर है, और इस अमर संबंध को कहते हैं भक्ति या प्रेम। और कहीं भी आध्यात्मिक स्तर के अलावा इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अमर प्रेम की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, क्या करने के लिए, इस प्रेम को बताने के लिए, इसको दिखाने के लिए, इसको बांटने के लिए और इसको चखने के लिए। और वो कहते हैं मालाकार स्वयं, मालाकार मतलब जो स्वयं माली बनता है। हम जानते हैं कि हम किसी कोई बीज को बोते हैं तो उसको पानी देना, उसका देखभाल करना, ये माली करता है। तो उसी तरह से भक्ति लता का बीज जब बो दिया जाता है तो इसका भी देखभाल करना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद आके माली बन रहे हैं और साथ साथ में जो इसके फल आते हैं फलों को भी चख रहे हैं और साथ साथ बांट भी रहे हैं और सारे संसार को कह रहे हैं कि आकर देखो कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति कितनी मधुर है, ये हमारी जीवन की सफलता है। इसलिए आज हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे। हमें ये जानना चाहिए सबसे पहले कि भगवान के भक्ति मार्ग में कोई भौतिक सीमा या भौतिक प्रांत देश का बंधन नहीं आता, क्योंकि आत्मा के ऊपर ये बंधन नहीं डाले जा सकते। आत्मा न तो इस देश का है न उस देश का, न इस प्रांत का न उस प्रांत का। आत्मा की भाषा न तो ये है न वो है। उसी तरह से भगवान का प्रेम है वो सर्व भाषाओं से परे है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान श्री कृष्ण यूपी के निवासी हुए, उत्तर प्रदेश के निवासी हुए, या जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु बंगाली हो या बंगाली लोगों के भगवान हुए और दूसरों के नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान को कहीं न कहीं तो प्रकट होना है। पृथ्वी में जब प्रकट होते हैं पृथ्वी का कोई तो इलाका चुन के उसमें प्रकट होते हैं, और जिस इलाके में प्रकट होते हैं क्योंकि वो साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं तो इसलिए उस इलाके के जो भी रीति रिवाज है उनको स्वीकार करते हैं, वहां का पोशाक पहनते हैं, वहां की भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से हालांकि भक्ति मार्ग के लिए हमारे मूल ग्रंथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवत है जो कि संस्कृत में विरचित है, फिर भी खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, इनमें से कई ग्रंथ बंगाली में भी हैं, क्योंकि उस समय जब ये ग्रंथों की रचना हुई थी तो साधारण भक्तों को समझने के लिए इस भाषा में लिखना आवश्यक था। कई ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे लेकिन वो ग्रंथ बहुत कम लोग समझ पाते थे। प्राय जन साधारण जो थी वो तो केवल जो स्थानीय भाषा थी वही जानते थे। तो इसीलिए स्थानीय भक्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रचार हेतु, उनको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने हेतु ये बंगाली में ग्रंथ लिखे गए थे, और इनमें से प्रमुख ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसके रचयिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े शुद्ध भक्त थे, उनके अनुयायी थे। बहुत वरिष्ठ आयु में उन्होंने वृंदावन में जाकर चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ लिखा। उस समय वृंदावन में कोई और रहता नहीं था, केवल चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था वृंदावन में रहने के लिए, केवल वही मात्र थे। तो आज हम पढ़ेंगे इस अध्याय को, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु भक्ति कल्प वृक्ष के माली बने, मालाकार है, और इसके फलों को चखने में कितना आनंद लेते थे और इसको किस तरह से बांटते थे।
प्रभु कहे हमें विश्वंभर नाम धरे, नाम सार्थक होए जोरी प्रेम विश्व भरे।
वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं, कृष्ण भगवान जब आ रहे हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, सोच रहे हैं कि मैंने विश्वंभर का नाम धारण किया है। विश्वंभर मतलब सारे जगत का धारण करने वाला, सारे जगत का आश्रय। तो मेरा नाम अगर विश्वंभर वास्तव में है, इस नाम का अगर सार्थक मुझे करना है, तो मुझे सारे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण या मेरे ही प्रति प्रेम को, भक्ति को फैलाना चाहिए। हम देखते हैं कि संसार में लोगों के नाम अलग अलग होते हैं। किसी का नाम होता है विजय, लेकिन हो सकता है कि हर चीज में विजय न हो। किसी का नाम हो सकता है सुशील, हो सकता है वो सुशील न हो। तो इस तरह से अलग अलग नाम हो सकते हैं। किसी का नाम हो सकता है अमर, लेकिन वो अमर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि मैं तो साधारण संसार के व्यक्तियों की तरह नहीं हूँ। मेरा नाम अगर विश्वंभर है तो मुझे विश्वंभर होना चाहिए, और विश्वंभर नाम का सार्थक करने के लिए मुझे वास्तव में विश्व भर में प्रेम, कृष्ण प्रेम को फैलाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने ठान लिया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा चिंती लोयल प्रभु मालाकार धर्म, नव द्वीप आरम्भील फलोद्यान कर्म। फलोद्यान का कर्म उन्होंने चालू किया, क्या करके, मालाकार धर्म स्वीकार करके। मालाकार मतलब माली, तो उन्होंने एक दिव्य माली का काम अपने आप अपने ऊपर ले लिया और सोचा कि नवद्वीप में जहाँ मैं प्रकट हुआ हूँ, यहाँ मुझे ये फलोद्यान बगीचा बनाने का काम आरंभ करना चाहिए। कौन सा फलोद्यान है ये, आम का या सेब का, किस चीज का है, आगे चल के बताएंगे। ये है भक्ति का, भक्ति का फलोद्यान। चैतन्य महाप्रभु ऐसा बीज बोने वाले हैं जिसके फल को चखने से हरेक आदमी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। ऐसे फलोद्यान को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसको बनाना चाहते हैं। हम का अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं, बाजार में उपलब्ध होते हैं। क्या ऐसा कोई फल है बाजार में जिसको चखने से आपको भक्ति मिल सकती है? बाजार में ऐसा कोई फल नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि मुझे संसार के लोगों को ऐसा फल देना है जिसका चखने से उनको कृष्ण प्रेम तुरंत आ जाए। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सींची इच्छा पानी। तो उन्होंने भक्ति वृक्ष को भगवान के धाम से वो लेकर आए नीचे। अभी हम देखते हैं कि खास करके भारत में लोगों को इम्पोर्टेड वस्तु बहुत पसंद होते हैं। जो विदेशी वस्तु होते हैं उसके लिए बहुत दो गुना तीन गुना ज्यादा पैसा देकर खरीदने के इच्छुक होते हैं। जो भी चीज यहाँ बनी जाती है उसके बारे में इतनी रुचि नहीं रहती, कमीज हो पैंट हो, लोग बाहर की चीजें खरीदना पसंद करते हैं। तो ये हमें जानना है कि ये जो कृष्ण भक्ति का वृक्ष है, भक्ति का मार्ग है, ये भी इम्पोर्टेड है, लेकिन कौन से देश से लाया हुआ है? ये इस संसार के किसी देश से नहीं इम्पोर्ट किया हुआ है। ये लाया हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के धाम से, गोलोक धाम से। गोलोक के अपने मत है ना हरि नाम संकीर्तन, ये हरि नाम का संकीर्तन जो है ये भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का ये शुद्ध धन है। और चैतन्य महाप्रभु वो है जिन्होंने इस धन को यहाँ लाया है, और चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति कल्पतरु को, कल्प वृक्ष को ले आकर अभी उन्होंने क्या किया, वो माली बने, और माली बनकर उन्होंने क्या किया, इसका आरोपण किया, इस कल्प वृक्ष का, भक्ति कल्प वृक्ष का आरोपण किया, बीज बो दिया और सिंचाई भी की, उसमें पानी डालने लगे। इस वृक्ष की पानी, इस वृक्ष का पानी क्या था, उनकी इच्छा, उनकी इच्छा से उन्होंने इस बीज को, भक्ति कल्प वृक्ष के बीज को बढ़ाने की शक्ति दे दी। कई जगह शास्त्रों में भक्ति की तुलना एक लता से या एक लता से की जाती है जो कि बढ़ते रहता है। लता को आप जानते हैं जो वृक्ष में चढ़ते हैं, दीवारों में चढ़ते हैं। तो शास्त्र में भी बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति लता बीज जो है, ये बीज को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। विरला ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको, जिसके हृदय में ये भक्ति लता बीज का रोपण हो सकता है। अनेक ब्रह्म, अनेक जन्मों के बाद में, ब्रह्मांड भर में भ्रमण करने के बाद, कई योनियों में जन्म लेने के बाद में, कोई विरला ही बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसको शुद्ध भक्त गुरु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। और ये लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु इसको मुफ्त में सब जगह बांटने के लिए। तो हमें हमारे जीवन की सफलता प्राप्त कराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण माली के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर। और ये बीज रूप कौन थे, हमने चार दिन चर्चा की थी, इनके बारे में चर्चा की थी, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्प तरु ते हो प्रथम अंकुर। वो कहते हैं कि जिस बीज को चैतन्य महाप्रभु ने बोया जमीन में, उसके प्रथम अंकुर थे, इस भक्ति कल्प तरु के प्रथम अंकुर थे माधवेंद्रपुरी। आप जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी कितने शुद्ध भक्त थे, इसकी चर्चा हो रही थी। और ये भक्ति लता बीज वास्तव में माधवेंद्रपुरी ने इस एक श्लोक में पूरा उस पर प्रदान कर दिया था। और वो कौन सा श्लोक था, अहि दीन दयाद्र नाथ हे मधुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदय त्वत अलोक कातरम दलित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। और माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन के कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मथुरा नाथ, हे दीनों के नाथ, हे दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको देख नहीं सकता, कदा अवलोक्य से, कब मैं आपको देख सकता, कब मैं आपको देख पाऊंगा, कदा अवलोक्य से। और अब जबकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, हृदय त्वत अलोक कातरम, तो मेरा हृदय बहुत विचलित हो रहा है, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तो ऐसे अवस्था में किन करूँगे हम, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं निस्सहाय हूँ। तो ये भक्ति के सबसे ऊंचे लक्षण हैं। और बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि स्वयं श्रीमती राजा रानी ने इस श्लोक का उच्चारण किया था। इसका आस्वादन चैतन्य महाप्रभु बार बार करते रहे। और केवल इन दोनों के अलावा माधवेंद्रपुरी ने इस श्लोक का पूर्णतया तात्पर्य जान लिया था कि भक्ति ये क्या चीज है, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की भावना में भक्ति क्या है। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति कल्पतरु का बीज है, जो बीज चैतन्य महाप्रभु लाए थे गोलोक वृंदावन से अपने साथ में हमारे हृदय में प्रदान करने के लिए, वो इन्होंने माधवेंद्रपुरी के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से सारे संसार के लिए प्रकट कराया। और आगे चल के क्या हुआ, श्री ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट होइल आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिल। फिर ये जो प्रथम अंकुर था भक्ति लता बीज का, इसको पुष्ट हुआ और किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? ईश्वर पूरी नाम के रूप में। माधवेंद्र पूरी के कई शिष्य थे, उनमें से ईश्वर पूरी सन्यासी शिष्यों में से प्रमुख रहे। वो भी प्रेम के सागर थे, क्योंकि उनको माधवेंद्र पूरी की कृपा प्राप्त हुई थी। और इस तरह से ईश्वर पूरी इस प्रथम अंकुर के विकसित रूप हुए और आगे चल के अपने चैतन्य माली स्कंद उपजिला। और आगे स्वयं जो मालिक है चैतन्य महाप्रभु, स्वयं वो उस वृक्ष के स्कंद बने। और स्कंद बनकर उन्होंने आगे क्या किया? आप जानते हैं कि वृक्ष का स्कंद होता है, स्कंद से क्या आते हैं? स्कंद से शाखाएं आते हैं, स्कंद से नीचे सारे जड़ होते हैं। तो इस भक्ति कल्प वृक्ष की जड़ कौन है, क्या है, और इसकी शाखाएं कौन है, क्या है, ये आगे चल के कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं। निज चिंत्य शक्ति माली होना स्कंद है, सकल शाखा रही स्कंद मूलाश्रय। तो भगवान उनके अचिंत्य शक्ति से खुद एक साथ ही इस भक्ति कल्प वृक्ष के माली भी बने, उसके स्कंद भी बने और उसके जो शाखाएं हैं वो भी बने एक साथ में। ये भगवान की दिव्य शक्ति है। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इस भक्ति कल्प वृक्ष के 9 प्रमुख जड़ थे, क्योंकि आखिर में वृक्ष जो होता है वो अपने जड़ों पे, अपने जड़ पे खड़ा होता है। जितना शक्तिशाली जड़ है उतना ही शक्तिशाली वृक्ष हो सकता है। अगर जड़ कमजोर होगा तो थोड़ी बहुत हवा आ गई, तूफान आ गया तो वृक्ष गिर पड़ सकता है। तो इस भक्ति कल्प तरु जिसका स्कंद चैतन्य महाप्रभु है, उसके 9 जड़ हैं। और ये 9 जड़ उनके 9 सन्यासी भक्त हैं, क्योंकि सन्यासी वैराग्य के प्रतीक होते हैं। तो भक्ति वैराग्य के ऊपर निर्भर होती है। जब हालांकि भक्ति करने से वैराग्य ज्ञान खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं शुद्ध रीति से, तो हमें संसार की आसक्ति धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी, संसार का भोग छोड़ना पड़ेगा। तो जो सन्यास धर्म है वो संसार के भोग से बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए ये भक्ति कल्प तरु के जो 9 जड़ थे ये सब सन्यासी थे, और ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के सारे शुद्ध भक्त रहे। इनके नाम क्या है? परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी। ए नव मल निकशिला वृक्ष मूले, ए नव मूले वृक्ष कोरिला निश्चले। इस तरह से ये भक्ति वृक्ष बहुत जबरदस्त शक्तिशाली रहा। क्यों? क्योंकि ये 9 जो जड़ थे ये बड़े शक्तिशाली थे। परमानंदपुरी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उस दिन। परमानंदपुरी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लीला में उद्धव थे। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए और नित्यानंद प्रभु बलराम जी का रूप लेकर आए, तो उसी तरह जो भी नित्य सिद्ध श्री कृष्ण के भक्त उनके धाम से उनके संग में आए थे कृष्ण लीला में शामिल होने के लिए, वही सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के लीला में शामिल होने के लिए भी आए। इस तरह से ये सारे शुद्ध भक्त गौर लीला में, गौर देश में प्रकट हुए। और जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला प्रकट की, उनमें भी किसी न किसी भूमिका में वो भी शामिल अवश्य रहे। तो परमानंदपुरी ये है साक्षात उद्धव। आप जानते हैं कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के भाई भी थे, कजिन, और साथ साथ उनके शुद्ध भक्त भी थे। और आखिरी उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार से अप्रकट होने के पहले उद्धव को दिया था, और उद्धव को फिर आदेश दिया कि अब तुम बद्रिक आश्रम जाओ और अंत समय तक, अंत काल तक तुम बद्रिक आश्रम में रहना और वहाँ तपस्या करना और फिर अंत में तुम मेरे पास चले आना, मेरे धाम में चले आना। तो वही उद्धव चैतन्य महाप्रभु की लीला में परमानंदपुरी नाम के सन्यासी भक्त के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु तुल्य समझते थे क्योंकि वो उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे और परमानंदपुरी को हमेशा सम्मान देते थे। जब भी वो परमानंदपुरी को देखते थे तो उनको दंडवत प्रणाम करते थे। तो हालांकि परमानंदपुरी अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का भक्त समझते थे क्योंकि परमानंदपुरी जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने संसार के नियम को तोड़ा नहीं क्योंकि संसार में नियम होता है कि जो अपने गुरु के गुरु भाई हैं वो गुरु के समान हैं, तो उनको हम सम्मान देना चाहिए। या जो सन्यासी होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, खास करके जो हमसे वरिष्ठ हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संसार की रीति को स्वीकार किया, परमानंदपुरी को हमेशा सम्मान दिया करते थे। दूसरे रहे केशव भारती। केशव भारती भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। जब हम माधवेंद्रपुरी के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने ये बताया था कि नित्य पार्षदों में से केशव भारती भी एक है। केशव भारती महाराज वैसे देखा जाए तो भिन्न मत है लेकिन शास्त्र में ये भी बताया गया है कि केशव भारती वास्तव में सांदीपनि मुनि है। कृष्ण लीला में उनके जब वो विद्यार्थी के उम्र में जब वो उज्जैन गए थे बलराम के साथ में मथुरा से गुरुकुल में रहे थे तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहे थे। आज भी ये सांदीपनि मुनि का आश्रम उज्जैन में हम देख सकते हैं। तो सांदीपनि मुनि कृष्ण भगवान के गुरु रहे, तो वही सांदीपनि मुनि केशव भारती महाराज के रूप में आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संन्यास दिया। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? भगवान श्री कृष्ण भले उनको संन्यास लेने की क्या आवश्यकता होती है, केवल कृष्ण भक्ति के प्रचार को अच्छी तरह से करने हेतु उन्होंने संन्यास लिया था क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब तक इस संसार में जो ज्यादा लोग गृहस्थ है वो संन्यासी को देखकर सम्मान देते हैं, तो अगर मैं संन्यास आश्रम का ग्रहण करता हूँ तो फिर लोग मुझे सम्मान देंगे और मैं जो कह रहा हूँ, जो बीज में लेकर आया हूँ, वो उसको स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया। ये कथा भी एक बार चर्चा की थी हमने। ये संन्यास लेने की लीला भी बड़ी अद्भुत थी। वैसे देखा जाए तो केशव भारती महाराज ने एक दंडित संन्यास लिया था। एक दंडित संन्यास मतलब जो अद्वैत संप्रदाय में संन्यास होता है, जो निराकारवादी होते हैं, शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं, वो एक दंडी संन्यास लेते हैं। मतलब उनका जो दंडा होता है संन्यास का, एक दंडा होता है जो ये बतलाता है कि हम और ब्रह्म एक ही है, परम ब्रह्म। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत। उनकी धारणा ये होती है कि संन्यास आश्रम ग्रहण करने से, दंडा ग्रहण करने से नर जो साधारण मनुष्य होता है वो नारायण बन जाता है। तो निराकार की विश्व में उपासना वो करते हैं तो एक दंडी संन्यास कहते हैं, लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनको त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। त्रिदंडी मतलब तीन दंडे होते हैं संन्यास दंडे में और उसमें कपड़ा होता है। तो तीन दंडे क्या होते हैं कि हमारे वचन, हमारा शरीर और हमारा मन, तीनों हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर रहे हैं। ये आत्मनिवेदन का एक प्रतीक है इसलिए इसको त्रिदंडी कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय से एक छोटा सा चौथा दंडा भी उसमें आ जाता है और वो क्या है, वो किसको संबोधित करता है, किसको, किसका प्रतीक है? आत्मा का, कि केवल अपने मन, वचन और शरीर को ही हम भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने आत्मा को भी पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से केशव भारती महाराज ने ऐसे कहा है, कहा जाता है कि उन्होंने मायावादी या अद्वैत संप्रदाय में दीक्षा ली थी, लेकिन कभी कभी ये भी बताया जाता है कि उन्होंने संन्यास माधवेंद्रपुरी से ली थी जो कि वैष्णव थे, मध्वाचार्य के संप्रदाय में आए थे। तो खैर चैतन्य महाप्रभु ने उचित समझा कि वो केशव भारती महाराज से संन्यास लेंगे। 24 साल के आयु में उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और कटवा नाम के गांव में बंगाल में उचले। वहां पर उनका मुंडन हुआ और फिर वहां उन्होंने केशव भारती महाराज के आश्रम में उनसे संन्यास लिया। वहां सारे हजारों हजारों लोग एकत्र हुए थे, हाहाकार मच गया था, वहाँ कोलाहल मच गया था कि आप निमाय पंडित को, क्योंकि संन्यास लेने के पहले चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे, तो आप निमाय पंडित को संन्यास नहीं दे सकते। तो किसी न किसी तरह से बहुत कठिनाई से केशव भारती महाराज बड़े दुविधा में थे कि क्या किया जाए। तो आखिर में उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जाकर केशव भारती महाराज से कानों में कहा कि मैंने कल रात एक स्वप्न देखा और मैंने स्वप्न देखा कि आप मुझे एक विशेष कृष्ण मंत्र दे रहे हैं और वो कृष्ण मंत्र है, और उन्होंने उनको कान में बोल दिया। जैसे उन्होंने कान में बोल दिया तो केशव भारती महाराज ने कहा तुम्हें कैसे, आपको कैसे मालूम हुआ, और फिर उन्होंने संन्यास दीक्षा दे दी। आचार्य बताते हैं कि वास्तव में केशव भारती महाराज हालांकि अद्वैत संप्रदाय में थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कान में उस मंत्र का उच्चारण किया तो वैष्णव दीक्षा केशव भारती को दे दी और केशव भारती को वैष्णव बनाया। उनको वैष्णव बनाने के बाद में उनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की संन्यास जो है वो वैष्णव संन्यास हो गई, त्रिजंग संन्यास हो गई। तो इस तरह से केशव भारती महाराज से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और फिर आगे 6 साल भ्रमण के लिए सारे भारतवर्ष पर वो गए तीर्थ यात्रा होने की। तो हम जान सकते हैं कि केशव भारती अगर उन्होंने ऐसे अद्वैत संप्रदाय में भी दीक्षा ली होगी, फिर भी ये भी भगवान की एक लीला थी, क्योंकि केशव भारती महाराज तो स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं भगवान के, तो वो अद्वैतवाद का को स्वीकार कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा प्रतीत होता है कि अद्वैत संप्रदाय में उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वैष्णव संन्यास लिया उन्होंने, ठीक उसी तरह से केशव भारती महाराज भी शुद्ध वैष्णव है, परम वैष्णव है। तो कभी कभी गणदेश दीपिका में यह भी बताया जाता है कि केशव भारती ये वास्तव में अक्रूर भी हैं। जिस तरह से अक्रूर कृष्ण भगवान को वृंदावन से मथुरा ले गए और सारे ब्रजवासी अक्रूर को कोस रहे थे कि तुम्हारी वजह से कृष्ण हमसे दूर चले जा रहे हैं, तुम हमारे कृष्ण को वृंदावन से दूर ले जा रहे हो और हम जानते हैं कि तुम लाओगे नहीं वापस उनको। तो इसी तरह से, और वो उनको कहते थे कि आपका नाम तो अक्रूर है जो क्रूर नहीं है, लेकिन हो आप वैसे बिल्कुल क्रूर, नाम है अक्रूर लेकिन आपके कार्य है क्रूर, क्योंकि आप कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हो। तो इसी तरह से केशव भारती महाराज के बारे में भी लोग कहने लगे आप भी अक्रूर की तरह हो, जो हमसे नवद्वीप के निवासियों से या सब धाम के निवासियों से आप चैतन्य आप निमाय पंडित को हमसे दूर ले जा रहे हो, संन्यास दे रहे हो। एक बार आदमी संन्यास ले लेता है तो अपने गांव में घर में नहीं रह सकता, वो तो हमसे दूर चला जाएगा। तो आप भी उसी तरह से हो जैसे कि अक्रूर वृंदावन में आके कृष्ण को ले गए, आप भी हमसे निमाय पंडित को ले जा रहे हो। तो इस तरह से केशव भारती रहे और ऐसे कई भक्त उनके थे, उनमें से ब्रह्मानंद पुरी भी थे। कभी कई बार ये प्रश्न आता है कि वैष्णव पंथ में ब्रह्मानंद पुरी ये नाम क्यों आता है। ब्रह्मानंद वैसे देखा जाए तो निराकारवादी या अद्वैतवादी संप्रदायों में ये नाम आते हैं, ब्रह्मानंद, निराकार ब्रह्म में कौन आनंद लेते हैं, केवल अद्वैतवादी आनंद लेते हैं। जो वैष्णव है निराकार में आनंद नहीं लेते हैं, वो साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण की सेवा करने में आनंद लेते हैं। तो फिर भी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के निकट के पार्षद और शिष्य ने उनके साथी ब्रह्मानंद पुरी थे, जो कि एक वैष्णव सन्यासी थे। इसका मतलब है कि ब्रह्मानंद ये एक वैष्णव भक्त को भी संबोधित करता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। पर ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण है। ब्रह्म का मतलब केवल निराकार नहीं है। पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही आदि पुरुष है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी परम ब्रह्म है। तो ब्रह्मानंद कहने से ये केवल अद्वैतवाद के व्यक्ति को संबोधित नहीं करता है, वैष्णव भी हो सकता है। तो इस तरह से ऐसे अन्य सन्यासी भी रहे, छह और सन्यासी जिनके नाम हमने पढ़े, और ये चैतन्य महाप्रभु रूपी भक्ति कल्प तरु के नौ शक्तिशाली जड़ रहे, और इन जड़ों में से सबसे प्रमुख रहे परमानंद पुरी। मध्य मूल परमानंद पुरी महावीर अष्टदिके अष्ट मूल वृक्ष कैल स्थिर। जो मध्य में मूल थे वो थे परमानंद पुरी, नौ मूलों में से वो परम धीर व्यक्ति थे, अपने इंद्रियों को बिल्कुल संयम में रख सकते थे। और बाकी अष्टदिके अष्ट मूल जो आठ दिशाओं में आठ मूल थे, उन्होंने ये भी इस वृक्ष को स्थिर करने में बहुत मदद की, क्योंकि जितने ज्यादा नीचे जड़ जाती हैं जमीन में और शक्ति से जमीन को पकड़ लेती हैं, उसी तरह से वो वृक्ष स्थिर रहता है, मजबूत रहता है। तो इस तरह से इस भक्ति कल्प वृक्ष के मूल जड़ थे परमानंद पुरी, और दूसरे आठ सन्यासी जो थे उनके पार्श्व वो आजू बाजू आठ वृक्ष आठ जड़ के समान थे। स्कंदेरा ऊपर बहु शाखा ऊपर जिला ऊपरे ऊपर शाखा असंख्य हो। स्कंद के ऊपर कई शाखाएं आई, एक नहीं शत शत शाखाएं आई ऊपर, बहुत सारी शाखाएं। जैसे अश्वत्थ वृक्ष को आपने देखा है कि एक वृक्ष कितने शाखाएं हो जाती है, उसी तरह से चैतन्य रूपी भक्ति कल्प वृक्ष के बहुत सारे शाखाएं होने लगी। विष विष शाखा कोरी एक एक मंडल महामहा शाखा चैल ब्रह्मांड सकल। इस तरह से चैतन्य वृक्ष के अलग अलग शाखाएं हुए, वो अपने अपने भक्तों के समाज बन गए। और इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी ये भी एक शाखा है चैतन्य वृक्ष की। तो आप भी अभी सब यहाँ आए हैं तो आप भी चैतन्य वृक्ष के एक शाखा के एक अंग हैं। तो देखिए ये वृक्ष जो है इतना विशाल बन गया है कि इस वृक्ष ने सारे पृथ्वी को छान लिया है, और इसके जो शाखाएं हैं सब जगह फैले हुए हैं। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की शाखाएं जो है वो सब जगह फैले हुए हैं, अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, जापान में, भारत में तो है ही, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हर एक देश में प्राय है। यहाँ की जो दूसरे देश है जैसे मुसलमान देश है, अरब देश है, या जो साम्यवाद देश है जहाँ ये वर्जित है, वहां पर भी भक्त छुप छुप के अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये भक्ति कल्प वृक्ष के जो शाखाएं हैं वो सब जगह फैल गए हैं, जिस तरह से कि एक अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जगह मिल जाता है घूम घूम के उस जगह पानी जहाँ होता फैल जाते हैं, उसी तरह से जहाँ भी इंसान है मनुष्य है वहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना से धीरे 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 से भी फैल रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, चैतन्य वृक्ष को हमें आगे बढ़ा के कृष्ण भक्ति उस शाखाओं से के माध्यम से उनको पहुँचाना है। एक एक शाखा ते ऊपर शाखा शत शत ये तो ऊपर जिलो शाखा के गणी बो। बोलते हैं कि एक शाखा से हजारों हजारों की संख्या में शाखाएं आई, कौन गिनती कर सकता है कि इनकी शाखाएं कितनी हुई, हजारों की संख्या में हुए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहने वाले भी हजारों की संख्या में भक्त रहे। आगे चल के चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस वृक्ष की शाखाओं का वर्णन करेंगे, और वो बताते हैं कि ये वृक्ष आगे चल के दो भाग इसके हुए। एक भाग को कहते थे नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम है, और दूसरे भाग हुए अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु के अवतार हुए, और इनके भी अलग अलग शाखाएं हुए। तो ये वृक्ष कितना बड़ा हुआ इसको कहना बहुत मुश्किल है।
उड़ुम्बर वृक्ष जाना फल सर्व अंगे ए तो भक्ति वृक्ष सर्वत्र फल लागे।
जिस तरह से उड़ुम्बर वृक्ष जो होता है उसके हर एक अंग पर फल होते हैं, वृक्ष हर एक जगह में फल होते हैं, ठीक उसी तरह से ये भक्ति वृक्ष इसके हर एक अंग से भक्ति के फल ले सकते हैं। जिस तरह से एक शक्कर का अगर बनाया हुआ वृक्ष है, कल्पना कीजिए अपने मन में शक्कर को बनाकर, शक्कर की शाखाएं, शक्कर का जड़, शक्कर का जो स्कंद है, सब कुछ शक्कर का, तो इस शक्कर रूपी वृक्ष को आप कहीं से भी चखेंगे तो आपको क्या लगेगा? मीठा ही लगेगा। जहां से भी चखेंगे उस शक्कर रूपी वृक्ष को, या वहीं पर वो मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा शक्कर का शक्कर ही है। ठीक उसी तरह से भक्ति का कल्प वृक्ष है, बहुत मीठा है, क्योंकि शक्कर से भी ज्यादा मीठा है कृष्ण प्रेम। जो इस कृष्ण प्रेम को चखते हैं, इस स्वाद को जानते हैं, फिर वो ज्यादा संसार के मिठास से, शक्कर से इतना वो प्रेम नहीं रखते हैं। हम देखते हैं कि लोगों को मीठे वस्तु खाने की बहुत रुचि रहती है, तो मीठे वस्तु क्यों? क्योंकि ये संसार का मिठास उसमें होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कृष्ण प्रेम के मिठास को प्राप्त कर लिया है, वो जानता है कि ये मिठास कुछ और ही है, निराला ही है, अलौकिक है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये कल्प वृक्ष जो है भक्ति का, हर जगह से ये फल लेता है। ऐसा नहीं कि केवल इन शाखाओं से देता है, किसी भी इलाके में जाइए, किसी भी अंग में जाइए इस वृक्ष का, वहां से मीठे मीठे कृष्ण प्रेम के फल मिल जाते हैं। मूल स्कंदे शाखा आर उपशाखा गण लागिला जय प्रेम फल अमृता के जीने। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति कल्प वृक्ष के मूल स्कंद थे, और जो फल इस वृक्ष से उगे उनका स्वाद अमृत से भी श्रेष्ठ था।
अकिला जय प्रेम फल अमृत मधुर विलाय चैतन्य माली ना ही लाया मोल।
तो ये फल जो है कृष्ण प्रेम के पकते गए, और जैसे पकते गए और भी अमृत के समान इनका स्वाद बढ़ता गया। और जो माली हैं चैतन्य महाप्रभु, वो इनका वितरण करने लगे बिना मूल्य के। है ऐसे कोई माली जो ऐसे आपूस आम को अपने बगीचे में उगते हैं और फिर उसको बिना मूल्य के सब लोगों में बांट देते हैं? जब संसार के मीठे मीठे फलों को भी लोग बांटना नहीं चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबसे अमूल्य स्वादिष्ट फल कृष्ण प्रेम के फल को सब जगह बांट रहे हैं बिना मूल्य के। हर व्यक्ति को कह रहे हैं आकर लेके जाओ।
श्री जगते जोतो आचे धन रत्न मणि एक फल मूल्य करेता ही नहीं गए।
अगर आप संसार के पूरे ब्रह्मांड के धन को एक करेंगे, उसको मिलाइए और उसकी गिनती कीजिए, कितना सोना चांदी पैसा जो भी है सबकी गिनती कीजिए, लेकिन इतना सारा ब्रह्मांड का धन एक बाजू में हो और ये भक्ति कल्प वृक्ष का एक फल एक बाजू में हो, फिर भी जो है एक समान नहीं होगा, तराजू का एक समान नहीं होगा। इस ब्रह्मांड भर के धन से आप इस एक फल को खरीद नहीं सकते, इतना मूल्य है इस एक फल का। आजकल आपूस आम की कीमत बढ़ती जाती है, लोग हमेशा कहते हैं भाई पिछले साल इतना कम था, आज इतना बढ़ गया है, अगले साल और बढ़ेगा। ये केवल आपूस आम की बात है, लेकिन ये फल इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है कि ये आप संसार के धन से बिल्कुल खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन हालांकि इतना महंगा है, ब्रह्मांड भर का धन इसको खरीद नहीं सकता है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, क्या कीमत पूछी उसके लिए उन्होंने?
माँ देवाना मांगे के हो पात्र व अपात्र, यह हर विचार नहीं जाने दया मात्र।
चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं सोचा कि कौन इसको मांग रहा है कौन नहीं मांग रहा है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, केवल उन्होंने सब जगह जाके ये भक्ति वृक्ष का फल बांट दिया। चाहे किसी ने पूछा हो कि मुझे दीजिए या नहीं पूछा हो, सबको हाथों में देते गए, ये लो कृष्ण प्रेम ले लो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को सबसे कृपालु अवतार कहते हैं। इतना अमोल अनमोल धन है ये, लेकिन बिना मूल्य इसको बांट रहे हैं।
अंजलि अंजलि भोरी फैले चतुर्दिशे, दरिद्र कूड़ा न खाए मन कार हासे।
दिव्य माली चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अंजलि अंजलि भोरी अपने मुट्ठी मुट्ठी भर भर के क्या कर रहे हैं, चतुर्दिशे चारों दिशाओं में सबको बांट रहे हैं। और जो भूखे गरीब हैं, मतलब केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, भक्ति की दृष्टि से जो भूखे हैं प्यासे हैं, वो सब अपने हाथ भर भर कर ले रहे हैं और खा रहे हैं, और खा के चख रहे हैं और हंस रहे हैं आनंद से। और इस आनंद को देखकर ये दिव्य माली चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है।
मालकार कहे सुनो वृक्ष परिवार, मूला शाखा उप शाखा जाते का प्रकार।
तो जो भी ये भक्त थे जिन्होंने इस भक्ति वृक्ष के फल को चखा खाया, उनको चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं,
अलौकिक वृक्ष करे सर्वेन्द्रिय कर्म, थावरा हो या धोरे जंग मेरा धर्म।
वैसे देखा जाए तो साधारण वृक्ष जब उसके फूल होते हैं तो फूल फल का कार्य नहीं कर सकते हैं, जड़ फूल का कार्य नहीं कर सकता, लेकिन ये वृक्ष ऐसा है कि इस वृक्ष का हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। जिस तरह से कृष्ण भगवान का दिव्य शरीर है, अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चरम जगन्ति। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर भी ऐसा है, वो अपने आंखों से खा सकते हैं, अपने कानों से वो बोल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, इसलिए उनको कोई कार्य करने में कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ठीक उसी तरह से ये भक्ति का वृक्ष जो है ये भी दिव्य है, और ये दिव्य वृक्ष के हर एक अंग जो है दूसरे किसी भी अंग का कार्य कर सकता है। और हालांकि स्त्री जो वृक्ष होते हैं जंगम होते हैं अर्थात स्थिर होते हैं, लेकिन ये वृक्ष कैसा है, ये इधर उधर चल सकता है, ये एक जगह में खड़ा नहीं होता। ये वृक्ष बड़ा अद्भुत वृक्ष है, आपने चलते फिरते वृक्ष को देखा है कभी नहीं, लेकिन ये भक्ति कल्प वृक्ष ऐसा है कि हालांकि इसके जड़ इतने शक्तिशाली है फिर भी ये चलता फिरता है।
ए वृक्ष रंग है सब सचेतन, बाड़िया व्यापीला सब सकल भुवन।
ये वृक्ष का हर एक अंग क्या है, सचेतन है, आध्यात्मिक है, और इस तरह से वो संसार के हर एक इलाके में फैल रहे हैं, ब्रह्मांड भर में फैल रहे हैं।
एकला मालाकार आमे कहाँ कहाँ जाबो, एकला वो कत फल पड़ी अभी लाबो।
तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा जो चक रहे थे, मैं तो अकेला माली हूँ, मैं कितने जगह जाके ये फल को बांट सकता हूँ, कितने फलों को मैं उठाऊंगा, कितने फलों को मैं बांटूंगा।
एकला उठाना दीते हो परिश्रम, केहो पाए केहो ना पाए रहे मन भ्रम।
बहुत कष्ट का कार्य होगा ये, अगर सबको मैं बांटने जाऊँ अकेला किधर किधर जाऊंगा, और मैं बांटा भी अगर मैंने तो कोई रह जाएगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा।
अतएव आमी आज्ञा दिलो सभा करे, जहाँ तहाँ प्रेम फल दे हो जारे तारे।
तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे इसलिए मैं सबको ये ब्रह्मांड में जो भी रहते हैं सबको आज्ञा देता हूँ, क्या आज्ञा देता हूँ, जहाँ तहाँ प्रेम फल देह जारे तारे, कि इस फल को चखो और फिर सब जगह इसको बांटो। यही उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को दिया था, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो तारा परिदेश, कि मेरे आज्ञा के ऊपर तुम इस कृष्ण उपदेश का प्रचार करो सब जगह ब्रह्मांड भर में जाकर।
एकला मालाकार आमे कत फल खाबो, न दिया वा ए फल आरती करिबो।
मैं तो केवल माली हूँ, अगर मैं फलों का वितरण नहीं करूंगा तो इतने फलों को साथ में लेकर क्या करूंगा, सारे फल मैं अकेला तो नहीं खा सकता।
आत्मा इच्छा अमृत वृक्ष सिंच निरंतर, कहाँ ते असंख्य फल वृक्ष रह ऊपर।
भगवान के दिव्य इच्छा से इस भक्ति कल्प वृक्ष के ऊपर पानी बसाया गया है और इसलिए इसके अंदर कितने सारे अनंत भक्ति के फल हैं, कृष्ण प्रेम के फल हैं। अतएव सब फल देह जारे तारे खाया हो लोक अजर अमरे, इसलिए ये फल को खाओ और इसको सब जगह बांटो ताकि संसार के सारे लोग अमर हो सकते हैं, बुढ़ापे से मुक्त हो सकते हैं, सारे कष्टों से मुक्त होकर भगवान के धाम में लौटकर अमर जीवन रह सकते हैं भगवान के संग में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया, भारत भूमि तो हो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक और कर पर उपकार। कहने लगे कि ये जिम्मेदारी कृष्ण प्रेम के फल को बांटने की, जो मैंने इतना कष्ट लिया है इसका, इस बीज का, इस वृक्ष का रोपण करके इसकी सिंचाई मैंने की है, अब इसके इतने सारे अनंत मीठे मीठे फल आए हैं कृष्ण प्रेम के फल, और मैं सारे फलों को अकेले नहीं खा सकता, इसलिए आप सबको मेरा साथ देना है इसको बांटने के लिए, बिना मूल्य आपको बांटना है। और बांटने की जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, वो उन लोगों के ऊपर है जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। सबसे प्रथम प्रमुख जो जिम्मेदारी है, क्यों, भारत भूमि पे होइल जन्म जार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार, क्योंकि ये दिव्य संस्कृति भारतवर्ष के लोगों में स्वाभाविक तौर से आ जाती है। इसलिए बताया जाता है कि यहाँ बच्चा बच्चा भी उसके कण कण में आध्यात्म है। प्रभुपाद जी बताते थे कि जो अशिक्षित किसान भी है गांव में, वो भी जानता है कि भगवान है, कृष्ण का नाम जानता है, राम का नाम जानता है, ये भी जानता है कि मेरा पूर्व जन्म था, पुनर्जन्म होगा, ये साधारण अशिक्षित व्यक्ति भी जानता है। लेकिन विदेशों में बड़े बड़े शिक्षित, तथाकथित शिक्षित व्यक्ति होते हैं, समाज के बहुत ही श्रेष्ठ वर्ग में रहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, हमारा पुनर्जन्म होगा, पूर्व जन्म था, भगवान है, उनका नाम कृष्ण है, नहीं जानते। तो देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ सड़क सड़क पे हर बच्चा जानता है, उसके कण कण में, रोम रोम में अध्यात्म की संस्कृति है, केवल उसको थोड़ा सा ऊपर लाना है, ढका हुआ है, उस आवरण को हटाएंगे तो भक्ति सारे भारतवासियों के हृदय में जो है वो प्रकट हो सकती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि भारत वर्ष में रहने वाले लोगों के ऊपर ये बहुत खास जिम्मेदारी है कि वो इस कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्वीकार करें, अर्थात इस कृष्ण भक्ति रूपी फल को चखें और बाद में उसको बांटें। जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, अपने आप के ऊपर उपकार करें, पहले अपने जीवन को सार्थक करें कृष्ण भक्त बन के, और फिर दूसरों के ऊपर उपकार करें। और इसी सिद्धांत के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य क्या है, केवल इस फल को चखना और दूसरों को चखाना, बस। हम क्या है, केवल चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, जो कि उनके पद चिन्हों में चल के हम भी माली बन रहे हैं, हम इस भक्ति कल्प वृक्ष का देखभाल कर रहे हैं, उसको सिंचाई कर रहे हैं, फलों को ले रहे हैं, चख रहे हैं। तो जो भी इस कल्प वृक्ष की छाया में रहते हैं, अगर वो इसको अच्छी तरह से चखते नहीं है तो कितना दुर्भाग्य होगा। चखना कैसे है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, इस नाम में उस फल की मिठास है। तो ये फल क्या है, ये नाम है, नाम के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस कृष्ण प्रेम को दे रहे हैं। तो अगर भक्तों के संग को प्राप्त करके हम कृष्ण नाम का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो इस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, जिसके पके हुए फल बहुत मीठे हैं, अमृत तुल्य हैं, लेकिन उसको चक्के नहीं खा रहा है। कितना दुर्भाग्यशाली, उल्टा छोड़कर नीचे जो सूखे पत्ते हैं वो खा रहा है, इस अमृत के समान जो फल उनको छोड़कर सूखे पत्ते खा रहा है। तो उसी तरह से जो लोग यहाँ आते हैं, संग में रहते हैं, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण नाम का उच्चारण सही ढंग से नहीं करते हैं तो कितना दुर्भाग्य है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप सब हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे ढंग से नाम का जाप करें, कीर्तन करें, ताकि यही स्वाद जो है इस सभी को आ सके। और आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रीमद् भागवत का श्लोक बताते हैं, एतावाज जन्म साफल्यम देहि नाम्यह देहेषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। ये सिद्धांत है वैदिक संस्कृति का कि प्राणे अर्थे धिया वाचा, सबसे पहले हमें प्राण जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, दूसरों के हित के लिए लगाना चाहिए। दूसरों के लिए प्राण नहीं दे सकते, प्राण ही अर्थ है तो कम से कम अर्थ अपना धन तो दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते तो धिया अपने बुद्धि दे सकते हैं, अगर वो नहीं दे सकते हैं वाचा तो अपना अपने वचन तो अवश्य दे सकते हैं, कम से कम बोल तो सकते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरों को बोल तो सकते हैं आप इस महामंत्र का उच्चारण कीजिए। तो वैदिक सभ्यता ये है कि हम दूसरों के लिए जिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तुम भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, तो भक्ति करो खुद और दूसरों को भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए प्रेरणा दे दो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, माली मनुष्य आमान ना ही राज धन फल फूल दिया कोरे पुण्य उपार्जन। मैं तो केवल एक माली हूँ, मेरे पास ना तो बड़ा राज्य है न मेरे पास कोई धन है, मेरे पास केवल थोड़े फल हैं, फूल हैं, और इनको ही मैं बांटना चाहता हूँ। ये यहाँ तहाँ दान करे प्रेम फल फलास्वादे मत्त लोक होइ लो सकल। ये कृष्ण भक्ति का फल इतना मीठा है कि जहाँ भी भक्त लोग इसका वितरण करते हैं और जो खाते हैं इस फल का स्वाद लेते हैं और जहाँ भी संसार में हो तो तुरंत उन्मत्त हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति के नशे में वो भी आ जाते हैं उन्मत्त, जैसे चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त हुआ करते थे। तो ये सबसे ऊंचा फल है, महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए मटिला से कल लोग हासे नाचे गाए। और जिस फल को बांटा चैतन्य महाप्रभु से वो महामादक है, जो भी खाता है उन्मत्त हो जाता है, लेकिन संसार के मध्य पदार्थों की तरह नहीं है, ये दिव्य मादक है। और इसको चखने से क्या होता है, मथुरा सकल लोग हंसे नाचे गाए, इसमें लोग हंसने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं कीर्तन के समय। तो आपने देखा होगा जब कृष्ण भक्त मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो सभी लोग कितने हर्ष उल्लास से नृत्य करते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं। तो ये भगवान के नाम का कीर्तन करने का फल होता है कि खुद ब खुद सभी लोग उन्मत्त हो जाते हैं। तो कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो तो उन्मत्त है ही, और संसार के सभी लोगों को उन्मत्त बनाने के लिए, कृष्ण प्रेम पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। दास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं चैतन्य रूपी भक्ति कल्प वृक्ष का। तो हम सब इस चैतन्य वृक्ष से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं और हमें इस फल का आस्वादन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और पर उपकार करके दूसरों तक भी ये पहुंचाना चाहिए। कल से हम चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग लीलाओं का वर्णन करेंगे चैतन्य चरितामृत से और चैतन्य भागवत से, और ये चलते रहेंगे अभी और 3 दिन तक। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न टीका टिप्पणी,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम